आने को थे, हम आने को थे और सुनाई पड़ा। लीलाशाह बापू के चरणों में बापू रहते थे, कैसे रहते थे, इन दो वचनों ने मेरे दिल को बहाव की भरी धारा में द्रवित कर दिया। दुख का, शोक का ये आंसू नहीं, लेकिन गुरुदेव की याद आ गई। मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई गहरी। 3 साल के थे, क्या क्या होता था। 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धियों के खेल देखे। 22 साल की उम्र तक न जाने क्या क्या उपासना और पापड़ वेले, और उस दाता ने घर में घर दिखा दिया। उसकी याद आते ही मेरा दिल भर गया। मैं शोक से, दुख से ये आंसू नहीं बहा रहा हूं। गुरुओं की कृपा का क्या वर्णन करें। मेरे गुरु की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। सहजोबाई को भी इसी प्रकार का गुरु प्रसाद मिला होगा, उसके साहित्य से पता चलता है। राजस्थान की सहजोबाई मान मेरे गांव की बहन अथवा मेरी सहोदर बहन, मेरी यात्रा की बहन। सहजों के वचन भी उसी ऊंचाइयों को छू कर आते। सहजो कहती हरी कृपा, जो होए तो, नहीं होए तो नहीं। सहजो कहती हरी की कृपा हो तो हो, ना हो तो कोई जरूरत भी नहीं है। हरी कृपा जो होए तो, नहीं होए तो नहीं। पर गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बही जाए। हरि कृपा करे तो करे, न करे तो भले हरि अपने पास अपनी कृपा संभाल के रखे। जब तक गुरु कृपा नहीं होती तो हरि की कृपा भी बह जाती है। अब गुरु की कृपा हो तो हरि कृपा चुप बैठ कैसी सकती है, आगे पीछे चलेगी। मैंने क्या सेवा की गुरु की। गुरु ने जो दे डाला है उसके आगे मेरी सेवा का कोई मूल्य नहीं, कोई महात्म्य नहीं, कोई कीमत नहीं। सतगुरु दाता जो देते हैं उसके आगे सेवक की सेवा तो निमित्त मात्र है, पत्रम पुष्पम है। जैसे सूर्य को दिया दिखा दिया, सूर्य को एक लोटा पानी चढ़ा दिया, आपने सूर्य को क्या दिया। ऐसे गुरुओं के लिए मैंने जो गुरु की सेवा की उसका मेरे नजर में कोई मूल्य नहीं, लेकिन गुरु ने जो दिया है उसका कोई माप नहीं। कैसे है ये व्यास स्वरूप गुरु। सुंदर दास्य कहते हैं, सुंदर सतगुरु आपते, सुंदर सतगुरु आपते किया अनुग्रह आई। अपने आप से अनुग्रह किया, हमने मांगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये चीज भी मांगी जाती। हम तो बस गए, अब गुरु के बिना गत नहीं। जिस शिव बाबा की पूजा उपासना करते, मंदिर में जाते ही पार्वती माँ का हार अथवा पुष्प मेरे को उत्साहित करने के लिए गिर पड़ते शिव बाबा के ऊपर चढ़े हार, मेरा मंदिर में जाना ही मानो मुझे वो स्नेह कर रहे, ऐसे संकेत मिलते थे मोटी कोरल में। अनुष्ठान चालू था और बार बार कह रहा कि साई लीला शापा के पास जाओ, मैं तुमसे पूरे का पूरा मिलूंगा। तुम कौन कहते हो? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करे हो मैं शिव कहता हूँ। कौन शिव? हृदय में आवाज आ रही, कैसे मैं जानू? न जाने कितनी कितने बाहर संकेत मिले, कितनी कितने कुछ परिचय मिले बाहर ये जगत के और अंतर जगत के संकेत। और हम पहुंचे गुरु के चरण में पहुंचे, फिर सुबह 9:30 के करीब पहुंचे और 2:30 क्या दे डाला उस दाता ने, हद हो गई। पहले एक बार सानिध्य मिला, फिर उनकी आज्ञा पालन की। इच्छा तो नहीं थी घर लौट जाऊं, लेकिन आज्ञा कर रहे घर जाओ। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, 13 दिन मुश्किल से गुजरे। नर्मदा किनारे पहुंच गए, फिर वहां से अनुनय विनय का पत्र लिखा किसी गुरुदेव के भक्त को। बापू जी कहाँ होंगे? बोले अभी नैनीताल से बापू जी वज्रेश्वरी बंबई के पास वाली एकांत जगह में पधारे। 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ और माँ और माँ की बहू आदम की थी रोज लालजी महाराज भी कहते थे घर जाओ, घर में रहकर भजन करो। बाप भाई कहता है कि हफ्ता में एक दिन दुकान पे आ जाएगा, 1 घंटा तो भी चलेगा, घर में रहकर भजन करो। मैंने लालजी महाराज को बोला तुम्हारा हमारा नाता भगवान के कारण है, तुम भगवान के रास्ते से हटाकर मुझे मोह के रास्ते भेजते हो तो आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। तो लालजी महाराज गदगद हो गए, बोले आप में बड़ा त्याग है। मैंने कहा मुझ में त्याग नहीं है, त्याग तो मेरे भाई में है कि परमात्मा को छोड़कर और 4 पैसे गिन गिन कर आयुष्य नष्ट कर रहा है, 1-2 मकान और 4 कोड़ियां संभाल कर जीवन दाव पर डाल रहा है, उसमें बड़ा त्याग है। मैं तो भगवान को चाहता हूँ, उसमें बड़ा राग है। भाई मेरा त्यागी है, मैं रागी हूँ। लालजी महाराज द्रवित हो गए, बड़ी स्नेह से उन्होंने विदा दी। पूरे गांव के लोग गदगद हो गए। उस समय विदाई के समय का उस देहात का माहौल ऐसा हो गया था कि वर्णन सुना है कि श्री कृष्ण जब जाते थे तो लोग कैसे रोते थे, क्या श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो लोगों ने कैसे कैसे आंसू बहाए, उसकी झलक उस समय मिली थी। कोरल से चले थे मियांगांव की गाड़ी में बैठे, मियांगांव से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी की 3 टिकटें मेरे मित्र को कहा था जो मेरी माँ को और उसकी बहू को लाया था, 3 तुम्हारी और 1 मेरी टिकट। मेरी तो तुम ले लेना, वज्रेश्वरी जाना है, माँ को जरा दिखा देना कि ये 4 टिकट है। माँ को बिठाया, उस मित्र को बिठाया, माँ की बहू को बिठाया, चालू गाड़ी में दौड़ते दौड़ते बंबई जाने वाली गाड़ी में जब बैठे तो माँ चीखी, उसकी बहू चीखी, लोग चीखे, लेकिन हमको जो चाहिए था उधर ही जाना था। भीड़ सोच रही है, भाग कर उस गाड़ी में गया, क्या चुरा गया? माँ ने बोला चुराया कुछ नहीं, मेरा बेटा है, क्या हुआ? गाड़ी दोनों क्रॉसिंग पे थे, वो उधर को चली, वो उधर को चली। 1000 जन्मों की माताएं मिली, पत्नियां मिली, पति मिले, लेकिन अब सतगुरु मिल रहे हैं तो फिर मैं दाव क्यों चाहूं? सतगुरु के पास जाने की अंतःकरण की प्यास को मैं कैसे बुझाऊंगा उनके सिवाय? शाम की सादी गाड़ी में बैठे और स्टेशने पर स्टेशने आती गई, फिर जहां उतरने का था उतरे, फिर सामान जो थोड़ा बहुत था हाथ से बनाकर ही खा लेते थे थोड़ा, और सामान बनाने का खाने का सोने का साथ में रखते थे, कोई नौकर मजदूर भगत को नहीं रखते थे। अब अपने ढोते थे। पहुंचे बापूजी घूमने को निकले थे, हम सुबह पहुंचे, अच्छा आ गया है। हम चरणों में पड़े, घर नहीं रहा बेटा, वाणी तो मौन रही लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। बापू ने कहा ठीक है, सब भगवान सब ठीक कर लेंगे। वजन वजन करके आराम ही कर रहे थे, उनका सेवक बुलाने आया, पढ़ा ग्रंथ। अब ये सब वाणी में आने की चीजें नहीं है, सहजोबाई कहती है हरी कृपा जो होए तो, नहीं होए तो नहीं, पर गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बह जाए। गुरु की कृपा और दया के बिना मेरी सारी मति और सारी कल्पनाएं बह जाओ, मर जाओ। हरि ने तो कृपा की, कईयों को मनुष्य तन मिला, लेकिन गुरु की कृपा नहीं मिली तो मोहिनी आसुरी और राक्षसी प्रकृति में बहे जा रहे। हरि ने कृपा की, सूरज दिया, चांद दिया, चंदा दिया, शास्त्र दिए, मंदिर दिए, मठ दिए, उपदेशक दिए, लेकिन सत्य को जानने वाले सतगुरु की चरण नहीं मिली तो सब होते हुए लोग तप रहे, परेशान हो रहे। लेकिन जिनको सतगुरु की कृपा मिल गई, हरि की कृपा हो जाए ना हो, उनको परवाह है। चरणदास गुरु ही के परताप सू मिटे जगत की व्याध, चरणदास गुरु की ही, गुरु ही के परताप सू मिटे जगत की व्याध, राग द्वेष दुख ना रहे, उपजे प्रेम अगाध, अगाध प्रेम गुरु कृपा से उपजता, अगाध औदार्य गुरु कृपा से उभरता है। जीवन में अगर जीते जी जीवन दाता का अनुभव करना हो तो औदार्य सुख, उदार बनना चाहिए, दानी बनना चाहिए, मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। और देने वाला तभी बन जाता है, तभी बन सकता है, जब कोई देने वाला हमें स्वीकार कर ले, देने वाला हमें स्वीकार कर ले, सतगुरु हमें स्वीकार कर ले, बस। गुरु ही के परताप सु मिटे जगत की व्याध, राग द्वेष दुख ना रहे, उपजे प्रेम अगाध। जो उदार होता है वो प्रेमी भी होता है, जो उदार होता है वो प्रसन्न भी होता है, जो उदार होता है उसमें सामर्थ्य भी आता है, उसमें सहजता भी आती है और उसमें सद्गुण भी आते हैं। जा धन को ठग ना लगे, जिस गुरु की उदारता रूपी रसधारा को अथवा दानवीर की उदारता को दान धारा को, जा धन को ठग ना लगे, धारी सके ना लूट, ठग ठग नहीं सकते और लुटेरे लूट नहीं सकते, चोर चुराए सके नहीं, गांठ गिरे नहीं छूट। चरणदास जी कहते गुरु लोग वो धन देना चाहते, वो धन दे डालते, जा धन को ठग ना लगे, धारी सके ना लूट, चोर चुराई सके नहीं, गांठ गिरे नहीं छूट, न गांठ से गिर सके न गांठ खुल सके, ऐसा धन गुरु ने दे डाला। जो सब सू गुरु कृपा करी, जो सब सू गुरु कृपा करी, दर्शन दीने मोही, रोम रोम में चरण दास मेरे दिल की बात कह रहे, मेरे गुरु और मेरी बीच की बात कह रहे, इसलिए मेरा मन फिर रुक गया भाव की उस मधुर धारा में। जब सु गुरु कृपा करी दर्शन दीना मोही, रोम रोम में वे रमे। जब सु गुरु कृपा करी दर्शन दीन है मोही, रोम रोम में वे रमे। बापूजी का अंगत सेवक था, निकट का सेवक था, लेकिन बापूजी जब महाप्रयाण करने की घड़ियों में आए, सारे के सारे किसी निमित्त से चले गए और बापूजी का सिर, मैं तो इस गोद को धनभागी मानता हूं कि इस गोद में मेरे सद्गुरु देव ने आखिरी यात्रा के समय सिर रखा। मां ने इस गोद पे सिर रखा। मैं अपने आप में बहुत बहुत संतुष्ट हूं, मुझे कोई फरियाद नहीं। चाहे कोई कुछ भी मेरे लिए सोचे, उसकी सोच उसे मुबारक। मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, पूर्ण खुश हूं, पूर्ण प्रसन्न हूं, पूर्ण तृप्त हूं। पिता ने संतोष के कई बार उद्गार निकाले और छुपे छुपे आशीर्वाद और कहते थे। मां भी बड़ी संतुष्ट रही और सतगुरु भी संतुष्ट रहे, तभी तो महाप्रयाण यहां किया। अब उन्हीं की कृपा मेरे द्वारा मेरे साधकों और श्रोताओं को भी संतुष्ट कर रही है। अब मुझे क्या चाहिए? और आप बताइए, जो मुझे सुनते हैं मिलते हैं वे भी संतुष्ट होते हैं। तो मुझे असंतोष किस बात का रहे, कमी किस बात की रहे। सेवक सेवा खोज लेते ऐसे बड़भागी सेवक भी, और श्रोता सत्संग का कार्यक्रम खोज लेते, टीवियों वाले श्रोता तक पहुंचाने की सेवा खोज लेते। मैंने किसी को कभी कुछ कहा नहीं। मुझे जब उसने अपना लिया है, गुरु ने अपना लिया है, तो किसी की मेहरबानी या किसी की कृपा की जरूरत ही क्या है मुझे? मैंने तो ईश्वर को भी मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। मैंने ईश्वर को भी शरारत के शब्द सुना दिए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी वो आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता के लिए ऐसा बोलने की मस्ती। जा धन को ठग ना लगे, धारी सके ना लूट। लुटेरा लूट की धारणा करे तब भी नहीं लूट सकता। चोर चुराए सके नहीं, गांठ गिरे नहीं छूट। न गांठ गिर जाए न छूट सके। जब सु गुरु कृपा करी दर्शन दीने मोही, रोम रोम में वे रमे। अब तो उनका अनुभव और वे ही तो रम रहे। अब मेरा जीव भाव कहां रहा, मेरा कर्ता भाव कहां रहा, भोक्ता भाव कहां रहा, सुखी दुखी भाव कहां रहा? अब तो वो सच्चिदानंद स्वरूप भाव, अब तो साक्षी दृष्टा भर्ता भोक्ता अनुमंता महेश्वर भाव गुरु भाव ही रहा। रोम रोम में वे रमे, चरण दास नहीं कोई। अब चरण दास जैसा कोई जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। सहजो कहती है, हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो नहीं, पर गुरु कृपा दया बिना सकल बुद्धि बही जाए। गुरु दर्शन कर सहजिया। सहजो कहती है गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजे ध्यान। सहजो बाई लिखती है हे सहज, अपने आप को कहती सहजिया, गुरु दर्शन कर सहजिया, गुरु का कीजे ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए तजिए कुल अभिमान। मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं क्षत्राणी हूँ, मैं बड़े घर की हूँ, मैं छोटे घर की हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारा देह का अभिमान छोड़कर मैं तो तेरा और तू मेरा। जिसके प्रति अपनत्व होता है वहां स्नेह सरकता है, स्नेह की धारा बनती। आप ईश्वर को अपना मानिए, ईश्वर प्राप्त महापुरुष को अपना मानिए, आप ईश्वर को प्रीति पूर्वक भजिए। स्वार्थ पूर्वक तो सारी दुनिया भज रही है। ऐसा नहीं कि नास्तिक लोगों की संख्या ज्यादा है, आस्तिकों की संख्या ज्यादा है। नास्तिक तो गिने गिनाए मिलेंगे, वे भी किसी न किसी में आस्था रखते ही है, किसी को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो बड़े नास्तिक को तो मानते हैं। तात्विक नजर से देखा जाए तो कोई नास्तिक नहीं, किसी को नहीं मानता लेकिन अपने को तो मानता है। बोले हाँ, तो तू कौन है खोज, जो खोजेगा तो अपना तो वही है जिसको आस्तिक मानते। केवल नादानी से ना समझी से कोई अपने को नास्तिक मान ले, वरना वास्तव में कोई नास्तिक नहीं, सब आस्तिक है। सब सुख चाहते, सब आनंद चाहते, सब स्वस्थ जीवन चाहते, सुखी जीवन चाहते, सम्मानित जीवन चाहते। तो सुख स्वास्थ्य सम्मान तो उस सुख स्वरूप से ही तो उसकी धारा उभरती हृदय में। तुलसीदास जी कहते बंदों गुरु पद कंज। जो लोग सूक्ष्मता नहीं जानते वे कंज को कुंज पढ़ते हैं। पद कुंज, कुंज नहीं कंज। कंज का अर्थ क्या होता है? कमल। जैसे कमल निर्लेप होता है, रसमय होता है, मकरंदमय होता है, सुखमय होता है, निर्लेपमय होता है, ऐसे गुरु के हृदय का अनुभव गुरु जी के चरणों के द्वारा जो उसका आभा मंडल है वो कंज है, सुखद है। तुलसीदास जी कहते बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कृपा का सिंधु है। जैसे दरिया में कभी पानी समुद्र में सूखता नहीं, ऐसे जिनके हृदय से करुणा और कृपा कभी कम नहीं होती, ऐसे सद्गुरु के चरण कुंज। चरण कंज को मैं बंधता हूं, बंदाऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु। कृपा का सिंधु है और नर का रूप लेकर वो ब्रह्म, हरि जो है नर का रूप लेकर प्रगट ब्रह्म मेरे सामने है, उनके चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। ये तुलसीदास जैसे महान संत कहते हैं बंदाऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन निकर निकर। जिनके वचनों ने महामोह और तम को जिनके वचनों ने मिटा दिया, जैसे सूर्य अंधकार को और कीचड़ को सुखा देता है, ऐसे ही उनके वचनों ने मेरा महामोह और दलदल में फंसने का स्वभाव सुखा दिया। चार प्रकार के शिष्य होते, एक कीमती ऐसी होती है तेलिया मती, जैसे तेल की एक बूंद दाल और थाली में फैल जाए, ऐसे गुरु का संकेत उनके कान में पड़ा और रहस्य उनके हृदय में फैल गया। हम इसीलिए सेवा करते थे कि अधिक से अधिक उनके वचन, अधिक से अधिक उनकी सेवा करके अब सच पूछो तो ये मेरे से झूठ बोला गया। हम इसीलिए सेवा करते ये शब्द मेरे से झूठा निकला, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि सेवा करके ये पाऊं। फिर भी अब कल्पना करता हूं कि उस समय का उद्देश्य थोड़ा सा कल्पना कर लेता हूं कि अनुष्ठान में जो भगवत प्रेरणा हुई कि इन्हीं के पास जाओ, तो इन्हीं को भगवान रूप मानकर, ब्रह्म रूप मानकर इनकी सेवा मैं करता नहीं था, हो जाती थी। जो प्रेम किया जाता है ना, वो उतना बढ़िया नहीं होता, और जो प्रेम हो जाता है वो घटिया नहीं होता। मैंने सुनाई वो कहानी अमेरिका में, क्लबों में लोग नाचते गाते, पत्नियां बदलते, पति बदलते। एक ऐसी बाई यूं थिड़कन ले और यूं हास्य करे, उसके चमकीले दांत और रेशम जैसे बालों का झटका ले, एक युवक उससे प्रेम करने लगा और क्लब में से छुट्टी वो रवाना हुई तो उसके पीछे गाड़ी लगा दी, और धनाढ्य सेठ था, आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूं। बातचीत हुई, डिनर भी हुई, अब लव मैरिज की तैयारी भी है, लेकिन उसने कहा चलो अब सो जाते हैं, रात हो गई है। तो उस सुंदरी ने अपने नकली बालों का खोपा उतार के रखा, तो भीतर छोटे छोटे सफेद बाल और दांत जो मोती की नाई चमक रहे थे वो चौकटे निकाले। वो युवक सेठ तो सिर पर पैर रख के भागा, हो क्योंकि उसने दांत देखकर, बाल देखकर प्यार किया था। दांत और बाल का पोल खुलते ही प्यार नफरत में बदल गया। धन देखकर प्यार करते हैं निर्धन लोग, कुर्सी देखकर लोग प्यार करते हैं नेता को, ये सारा प्यार फंसने फंसाने वाला है। लेकिन जो ईश्वर के नाते सहज में होता है, तरने और तारने वाला होता है। राम जी को देखकर सुरपंखा प्यार करती है, नहीं, उसमें काम है राम के बाह्य स्वरूप पर। और जनकपुरी की माया श्री राम जी को निहार कर प्यार करती है, उनमें काम नहीं है, उनमें स्नेह है तो मोह, लेकिन वो स्नेह का रूप ले रहा है। भगवान राम का भगवती अंश के प्रभाव से उनके हृदय का सत्व अंश उभरा है, इसलिए प्रेम हो गया है, और सुरपंखा का काम अंश उभरा है, इसलिए प्रेम गंदा हो गया, नाक और कान कटाने वाला हो गया। मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, प्रेम इंसान की जरूरत है। प्रेम निर्दोष होता है तो परमात्मामय रस लाता है, प्रेम जब धन के इर्द गिर्द मंडारता है तो लोभी बनाता है, शरीर के इर्द गिर्द मंडारता है तो अहंकारी बनाता है, दूसरे के शरीर के इर्द गिर्द मंडारता है तो कामी बनाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अगर ईश्वर के सिवाय की जगह पर प्रेम होता है, ईश्वर प्राप्त महापुरुष की सिवाय और जगह प्रेम होता है, तो प्रेम खतरा पैदा करता है। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के तरफ किसी भी प्रकार प्रेम हो जाए तो देर सवेर परमात्मा स्वरूप को प्रकट करा देता है। बूंद पड़ी तेल की पूरी थाली छा गई, अथवा तो ऐसा कहो कि जैसे पेट्रोल आग को पकड़ लेता, खींच लेता, ऐसे वो गुरु के संकेत को, गुरु के अनुभव को खींच लेता, पकड़ लेता। दूसरे शिष्य ऐसे होते जैसे कपूर, बस आग छुआते ही, गुरु की कृपा छूते ही शिष्य में दिव्यता आ जाती। तीसरे होते कोयले जैसे, अग्नि के निकट रखते, फूंकते फूंकते फिर अग्निमय होते। और चौथे होते केले के स्तंभ जैसे, अग्नि के साथ रखो तभी भी केले का स्तंभ अग्नि को बुझा देगा, लेकिन खुद चमकेगा नहीं। फोर्थ क्लास चेले, मैंने नाम दान लिया जी, फिर तो ऐसा ऐसा क्यों करता है? बोले ऐसा कुछ नहीं किया जी, मैं तो बापू का शिष्य हूं जी, लेकिन अभी मैं बापू को नहीं मानता हूं जी, अभी तो मैं स्वतंत्र हो गया जी। तू स्वतंत्र हुआ के सिगरेट के शरण हुआ, वाइन की शरण हुआ कि ब्रांडी की शरण हुआ, वो तू तेरे मन को पूछ। क्या करें, वहां जाते तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इसलिए हम नहीं जाते, अपने मजे से रहते। हाँ, बापू के फोटो तो अपने घर में रखते, बाकी बापू को तो मानता हूं मैं, उनके विचारों को नहीं मानता हूं। तो तू क्या खाक मानता है बापू को? एक प्रसिद्ध वक्ता ने भाषण में बोल दिया, मैं गांधी जी को तो मानता हूं, गांधी जी के लिए मेरे मन में प्यार है, मान गांधी जी को तो मैं मानता हूं, लेकिन गांधी जी के विचारों से मैं सहमत नहीं। मन में आए तो मजा ले लेना चाहिए, संभोग से समाधि का रास्ता क्या बुरा। लेकिन गांधी जी ने तो जिद पकड़ा, संयम, 36 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत, ये मैं गांधी जी के विचार नहीं मानता। तो तू गांधी जी को क्या मानता है भगवान? उस बेचारे ने कई अपने नाम भी बदले, फिर भी भगवान मंगल करे सभी का, अच्छे हैं, कुछ न कुछ सद्गुण तो थे ही। नारायण नारायण नारायण। जब मनमाना कोई गुरु बन जाता है सतगुरु के द्वारा, अहम परम गुरु में नहीं मिलता, तब तक विद्वान हो सकता है, कथाकार हो सकता है, प्रसिद्ध और प्रचारक हो सकता है, लेकिन सतगुरु का पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान जब तक नहीं लेता, तब तक बेचारा कहीं न कहीं ये जीव रुक जाता है। सुंदरदास एक उच्च कोटि के संत हो गए। सुंदर सतगुरु आपू ते किया अनुग्रह आही, मोह निशा में सोते हमको लिया जगाई। मोह निशा में सो रहे थे, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं जीव हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, अपने को जानते ही नहीं थे। मन जैसा बनता था ऐसे अपने को मानते थे। सुंदर सतगुरु सरीखा कोहु नहीं उदार। सुंदरदास जी कहते हैं सतगुरु जैसा दूसरा कोई उदार हमें नहीं मिला, न कोई है न कोई हो सकता है। देवता लोक आप पत्रम पुष्पम सेवा पूजा करें, 200-500 खर्च करें तो 50,000 का आपका मंगलमय आशीर्वाद देवता दे सकते हैं, लाखों करोड़ों का आशीर्वाद दे सकते, लेकिन वो नश्वर चीज ही दे सकते। अपने आप को ब्रह्म स्वरूप को दे डालना, ये परमेश्वर और परमेश्वर प्राप्त सद्गुरु के सिवा किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी भी जीव की ताकत नहीं और किसी भी देवता की ताकत नहीं। देवताओं का मैं आदर करता हूं, देवता भोग दे सकते, एक आशीर्वाद दे सकते और लोग भी एक नश्वर चीजें दे सकते। जिन चीज को पाकर बाद में आप रीते रह जाए, उन नगण्य चीज का मूल्य तत्व ज्ञान के आगे विशेष नहीं होता है। प्रभु प्राप्ति के आगे नगण्य चीजों का मूल्य नगण्य ही है। सुंदर सतगुरु सरीखा कोहू नहीं उदार, ज्ञान खजाना खोलिया सदा अटूट भंडार, अखूट भंडार। समदृष्टि शीतल सदा, अद्भुत जाकी चाल। ये सतगुरु लोग कैसे होते? समदृष्टि, व्यवहार में तो विषमता लगेगी, हाथी में, ब्राह्मण में, गऊ में, पंडित में, ज्ञानी समदृष्टि होते हैं। ये समदृष्टि का सत्संग सुनकर एक चेला जिसके यहां गुरु ठहरे थे, बोलता है गुरु जी आज तो सत्संग सुना के आप तो समदृष्टि हैं, मेरी पत्नी मासिक धर्म में चली गई, इसलिए आज तो गाय को जो खान खिलाते हैं वही थाली में परोस के ला रहा हूं, क्योंकि आप तो सब में सम देखते हैं। अरे मूर्ख समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते हैं। जो घास गाय खा सकती वो गुरु को नहीं खिलाया जा सकता, और जो हाथी से जो काम लिया जा सकता है वो गाय से नहीं, और जो गाय से व्यवहार किया जाता है वो कुत्ते से नहीं। व्यवहार में तो विषम दृष्टि होगी लेकिन तत्व से सम दृष्टि रहेगी, जैसे माँ अपने बेटों के प्रति सम दृष्टि रखती। एक बेटा किसान का काम करता है, खेत में जा रहा है, उसे रोटी और प्याज की सब्जी अथवा अचार देती है। दूसरा लड़का MBBS का एग्जाम देने जा रहा है, उसे मालपुए देसी घी में बनाकर दूध में डुबाकर नाश्ता दे रही। तीसरे बच्चे ने जुलाब लिया, उसलिए खिचड़ी बनाई। और चौथा बच्चा थोड़ा बीमार है, उससे मौसमी का रस दिया। और पांचवें बच्चे को बुखार हो रहा है, ऊं ऊं कर रहा है, थप्पड़ पड़ेगी, अभी थोड़ा व्रत रख ताकि कच्चा रस आम पक जाए फिर खिलाऊंगी। पांचवा मांग रहा है, एक को मालपुए खिला सकती और पांचवें को खिचड़ी भी नहीं देती और आंखें दिखाती है, फिर भी सभी बच्चों के प्रति माँ की करुणामय समदृष्टि है। ऐसे सदगुरु की भी सभी शिष्यों के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होगा लेकिन उनके मंगलमय समदृष्टि सदगुरु की सबके प्रति रहती है। श्रम समदृष्टि शीतल सदा, समवर्ती नहीं समदृष्टि। अद्भुत जांकी चाल, ऐसा सतगुरु कीजिए पल में करे निहाल। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की।
बचपन में ही घर को छोड़ा चरण में सागर में आए नृत्य गमधार की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन मन धन सब अर्पण करके गुरु में दृढ़ खड़ा, तन मन धन सब अर्पण कर ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। जीवन मुक्त विचरते हैं दिल शहंशाह की, जीवन मुक्त विचरते हैं दिल शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा के परवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। सुख को भरते दुख को हरते करते ज्ञान की बात जी, सुख को भरते दुख को हरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाल नारायण करते दिन रात जी, जग की सेवा लाल नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल शहंशाह की, जीवन मुक्त विचरते हैं दिल शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह।
ओम नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। मलुकदास उच्च कोटि के संत हो गए, वे कहते हैं जीती बाजी गुरु प्रताप ते, जीती बाजी गुरु प्रताप ते माया मोह निवार। माया मोह का निवारण कर दिया गुरु ने, ऐसी बाजी मैंने जीत ली। जीती बाजी गुरु प्रताप ते माया मोह निवार, कह मलुक गुरु कृपा ते उतरा भव जल पार। कह मलुक गुरु कृपा ते उतरा भव जल पार। सुखद पंथ गुरुदेव यह, सुखद पंथ। सुख के लिए तो हम भागते हैं, क्या क्या करते हैं, कुठियां बनाते हैं, क्या शादियां करते हैं, लोगों को रिझाते हैं, पार्टियां करते हैं, उधारा लेकर भी दहेज देते लेते हैं, क्या नहीं करते, फिर भी दुख जाता नहीं। लेकिन गुरु ने आत्म सुख ऐसा दिया कि कोई दुख टिक नहीं सकता और सुख कभी हटता नहीं। सुखत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए ऐसो उपट पाए, अब जगमग चले बलाए। सुखत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए, अपने घर में घर दिखा दिया, अपने आप में सुखी रहना सिखा दिया, विश्रांति पाना सिखा दिया, और विश्रांति से सामर्थ्य उभारना सिखा दिया, और सामर्थ्य का अहम मिटाकर सच्चिदानंद के साथ ब्रह्मा विष्णु और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होना सिखा दिया। सुखत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए ऐसो उपट पाए, अब जगमग चले बलाए। ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, अब भ्रांति चली गई, ब्रह्म भगा ना समझी दूर हो गई, दिले दिल में दिलबर को देख लिया, अब किसी वस्तु की व्यक्ति की परिस्थिति की मोहताजी नहीं रही। ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेश, अर्थात ज्ञान का अज्ञान का लेश भी नहीं रहा। स्थूल शरीर मैं हूं ये मोह नहीं रहा, सूक्ष्म विचार ये मेरे विचार हैं, सूक्ष्म शरीर में मैं हूं ये मोह भी नहीं रहा, और मुझे समाधि लगी रहे अथवा विक्षेप है ये कारण शरीर की फरियाद भी मेरी फरियाद नहीं रही। लेश भी मोह नहीं रहा, स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं कारण नहीं, तीनों शरीरों का मोह चला गया। तब माया छली हित किया महा मोहनी भैंस, तब ये माया छली ने एक तरफ तो संसार को नचाती, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो वो माया छली भी अनुकूल होकर कदम कदम पे अपना अनुकूल खेल करती। ताको आवत देख के कहीं बात समझाए, इस माया की लीला को आकर आते हुए देखकर कई बातें मुझे समझ में पहले से आ जाती है कि अब माया में ये होना है, माया में ये घटना है, और माया को संकेत करो कि ऐसा ऐसा तो वो ऐसा भी कर डालती है। ताको आवत देख के कही बात समझाए, अब मैं आया गुरु शरण तेरी कछु न बसाए। अब मैं गुरु की शरण हुए माया, अब तेरी दाल नहीं गलेगी, अब तू कुछ अनुकूल करके मुझे रिझा अथवा प्रतिकूल करके मुझे डरा, लेकिन अब मैं जान गया कि तू माया जिसकी सत्ता ना रहे, मां माना नहीं या माना, जो दिखे जो टिके नहीं और दिखे मैं जान गया हूं, और जो दिखे नहीं और कभी न मिटे उस अपने यार को मैं पहचान गया हूं। अब तू क्या करेगा। मैंने सुनाया था कबीर जी का किस्सा, कबीर जी का झोंपड़ा जलवा दिया वैश्या ने, क्यों कि पास में ही कबीर जी के एक घास का झोंपड़ा जहां कीर्तन भजन होता था अपना घर के साथ, लोग कीर्तन से आह्लादित होते आनंदित होते, तो उस नर्तकी के कभी कभी ग्राहक भी कीर्तन में चले जाते और उनका मन बदल जाता, वो नर्तकी के वैश्या के ग्राहक कबीर के भक्त बन जाते। एक बार दो धनवान आसामी आए थे नाच गान देखने और उसके घर रात रहने को। कबीर जी के यहाँ कीर्तन सुनकर वहां चले गए। ऐसा ने देखा कि अब इस बाबा का झोपड़ा जलवा दो, ये यहां से भागे, नहीं तो मेरी ग्राहकी खत्म हो जाएगी, मेरे धंधे पर खतरा आएगा। तो अपने यार को, एक पंडा था, उसको चढ़ाकर भिड़ाकर कबीर जी का झोपड़ा जलवा दिया। अब भक्त लोग कीर्तन करने सुबह आते, फिर धीरे धीरे रस आता तो 10 बजे या 11 और 12 तो तपते लगता। कबीर जी के चित्त में हुआ कि तप रहे हैं। अब उनके चित्त का थोड़ा सा ही संवेदन सृष्टिकर्ता से सहा नहीं गया और वहां आग के रूप में वो सच्चिदानंद प्रकट हो गए। गणिका के घर को जलाकर खाक कर दिया, पक्की कोठी जलकर खाक हो गई। समझ गए कि अकारण अग्निदेव प्रकट हुए और सब जलकर खाक हुआ, इस फकीर का ही कुछ हाथ है। कबीर के चरणों में आई और गिड़गिड़ाई के महाराज मेरी कोठी जल गई और मेरा सामान जल गया, कोई कारण नहीं था आग का, आप ही बताओ ये क्यों जला, आप ही ने जलवाया, क्या किया। कबीर झूठ कैसे बोल सकते हैं। कबीर ने कहा देखो तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया तो मेरे यार राम ने तेरा घर जलाया, पहल तूने की, शुरुआत तूने की, फिर मेरे यार को ऐसा लग गया, तेरे यार ने मेरा झोपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरी कोठी जलाई, पहल तूने की थी, शुरुआत तूने की थी। फिक्र न करो, भक्तों को कहता हूं थोड़े थोड़े पैसे निकाल के तेरे को भी झोपड़ा बना देंगे। बाद में वो वैश्या नर्तकी कबीर जी की भक्त हो गई। भगवान न जाने किसको किस ढंग से अपने सच्चे सुख के तरफ बुलाना चाहता है। नर्तकी का भी हित चाहने वाले ईश्वर ने कैसी लीला की कि नर्तकी अपना जीवन तबाह न करे, बर्बाद न करे। आपके घर में, कुटुंब में, खानदान में कहीं कलह, कहीं विघ्न, कहीं बाधा आए तो समझ लेना कि हमें इस मोह जाल से दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ खेल खिला रहे, क्योंकि भगवान हम सबके परम सुहृद हैं, परम हितेशी। हम भाई के गिड़गिड़ाने से थोड़ा बहुत दुकान पे आते जाते थे। हमारी बेटी बेटों की शादी नहीं तो नहीं होगी, तुम नहीं करोगे तो एक बार शादी कर लो, फिर जैसे रहना हो रहना, सारे उन्होंने वचन दिए। तो फिर शादी तो हो गई, रहते थे अपने मर्जी के अनुसार साधन भजन। फिर भी दुकान पे आते तो वहां मोह माया के वातावरण में एक बार कोई ऐसी घटना घटी कि कुछ व्यापारी फंसे और उन व्यापारियों ने कहा कि आंसू मलया जो बोलेगा ना अपना रास्ता निकलेगा, तू मेरे पास आए। भाई जो बिजनेस कर धंधा करते थे वही धंधे वाले किसी कारण कहीं फंसे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मेरे दुकान पर काम करने वालों ने, काम करने वाले रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो भगत आदमी, लेकिन उनको तुमने अभी भी उनको तो वो रास्ता बता दिया ना जो ठगी में पकड़े गए तो छूटने का, आखिर तो मैं क्या वास, ये उसी की कृपा है, संकेत अच्छा है, जरा गद्दी पे बैठो। दुकान की गद्दी पे उसको बिठाकर मैं तब से चला तो आज तक एक सेकंड भी उस जगह को देखा नहीं मैंने। मेरे यहाँ काम करने वाले के द्वारा ही उसने कहलवा दिया कि आखिर तुमने भी तो इस वातावरण में यही कहा, ठगी में पकड़े हैं और वो ठगी से पकड़े गए, छूट जाए, ऐसा ऐसा तुमने भी बताया, तो इसी का नाम तो माया है। उसने लंबा तो नहीं कहा लेकिन अंदर से इसी का नाम तो माया है, संग का दोष है, चल मेरे भैया। फिर तो कहीं कहीं घूमे, क्या क्या पापड़ वेले, और जब सतगुरु मिल गए तो फिर कभी बयान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो गया। और उन्हीं की कृपा का विस्तार है, तो हम चाहते हैं कि आप मेरे गुरुदेव की प्रसादी को खूब खूब ले रहे और उसका खूब खूब आदर करना बचाना। वशिष्ठ महाराज को जिस बात का खटका था मुझे भी उसी बात का खटका अधिक लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी एक ब्राह्मण चिंतामणि की इच्छा से खदान को खोदने गया सहज में उसे चिंतामणि मिली। जो सहज में मिली विधि विधान आडंबर सिवाय मिली सहज में मिली हुई चिंतामणि को साधारण समझकर उस मूर्ख ने कदर नहीं की। फिर कई खदानों में उसने मजदूरी की और एक चमकीला पत्थर मिला वो अभागा मेहनत के बाद पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि समझकर घर लौटाया लेकिन वो पत्थर क्या देगा। ऐसे ही हमारा सत्संग और साधन सहज में चिंतामणि की नाई है लेकिन हम सहज में देते हैं। मंत्र दीक्षा दे दी कोई रुपया पैसा चीज वस्तु न लाओ कोई विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं आ जा ले जा ध्यान योग शिविर में आ जा ले जा सत्संग में आ जा ले जा। ये मामला हमारा भी ऐसा है इसलिए हम हाथ जोड़कर आपको कहते हैं जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं ऐसे हम आपको कहते हैं कि एक अमूल्य निधि है अमूल्य खजाना है। हम जो आपको बताते हैं वो आप मनमानी 12-12 साल की चार साधनाएं करें तब भी वहां आपकी गति नहीं हो सकती जहां हमारे गुरुदेव के प्रसाद से आपकी गति की रीत हम आपको बता देते हैं हंसते खेलते। और केवल बताते नहीं ध्यान योग शिविर में हम उस रास्ते आपको ले भी चलते और केवल ले ही नहीं चलते हैं उस रास्ते का स्वाद भी आपके मन को लगवा देते और फिर उस स्वाद से रंगा आपका मन जब पूजा के रूम में बैठता है विधिवत बैठेगा तो आप एक आसन लगा लेंगे जिस आसन में जरूरत पड़े तो आप लेट सके। अगर आपके शरीर का तनाव है तो वो जीवनी शक्ति अपने आप आपको लेटाएगी। अगर किसी शरीर में थकान है अंग में तो वहां करवटें ले। अगर प्राणायाम की जरूरत है तो आपको करने नहीं पड़ेंगे वो जीवनी शक्ति भस्त्रिका या प्राणायाम करवाएगी। आपको तो नियम के 10 प्राणायाम करने बाद में अगर जरूरत पड़ी तो जो आसन आपको जरूरत है आपने देखा सुना नहीं वो आसन आपका अपने आप होगा। जो मुद्राएं आपने देखी सुनी नहीं ऐसी मुद्राएं अब मैं करने बैठूंगा तो नहीं होती ऐसी मुद्राएं आपको होने लगेगी। और जिस रोग की दवा बनी है चाहे नहीं बनी उस रोग को मिटाने के लिए आपकी जीवनी शक्ति वहां स्पंदन भेजेगी और अपनी हथेली रगड़ रगड़ के उस रोग को निकालने की आपको अटकल आ जाएगी। आप दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश करोगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी लेकिन आपकी ऐसी ऊंचाइयां आ जाएगी विश्रांति में कि दूसरे के मन की बात जानना चाहो तो आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन उस झंझट में आप पढ़ना मत। आप तो ईश्वर को प्रीति करते और साधना के रास्ते पे चलना इसमें बहुत कुछ आकर्षणीय शक्तियां आती बहुत कुछ मिलता है। आप इसका महत्व नहीं समझते क्योंकि मुफ्त में यहां बट जाता है शिविरों में मुफ्त में मिलता है। जितने लोगों को बटा है मिला है उसमें से 1% समझो लाख लोगों तक बटा है तो 1,000 लोग और 50,00,000 लोगों तक मैंने बांटा है तो 50,000 आदमी भी अगर उस यात्रा पे चल पड़े तो देखते देखते हिंदुस्तान का तो क्या पूरे विश्व का नक्शा मैं बदल सकता हूं। मेरे पास गुरु का वो खजाना है पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते पूरी मानवता आज इन 3 तनावों से तनी जा रही है शारीरिक तनाव मानसिक तनाव भावनात्मक तनाव। ईश्वर को न पाओ तो न पाओ साक्षात्कार न करो तो ना करो लेकिन 1,00,000 आदमी पर जो गुरु प्रसाद बरसाता हूं उसमें से 1 आदमी तो निकल के आ जाओ और फिर आप लग जाओ थोड़े दिन जैसे गुरु कृपा मिली फिर मैंने उस कृपा रूपी चिंगारी को फूंकते फूंकते ज्वाला उत्पन्न की और अंधकार मिट गया। 7 साल में लग गया। एक योगी से मैंने पूछा कि आत्मरस पाया हुआ महापुरुष 1 मिनट में 1,000,000 आदमी को परमात्मा की झलक दे सकता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है और संत वचन झूठे नहीं होते हैं। तो उसने कहा बैठो और उसने मेरे को करके दिखाया। फिर उनकी सम्मति से मैं 40 दिन के लिए बंद हो गया और 37वें दिन ये सारी शक्तियां सिद्धियां सारी मेरे आगे प्रकट हो गया मेरे अंतकरण। और 40वें दिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसका प्रयोग किया। तो उस पहले प्रयोग में वो शंकर विलास होटल का मालिक आता आया था, शिवलाल डीसा का था, छोटी सी होटल। उस पर किया तो शिवलाल का मन बदल गया और ईश्वर की तरफ लगा, अभी आश्रम में है। शंकर भाई और दूसरे जिन भाइयों पर हो गया उनका जीवन बदल गया। थोड़ा बहुत जीवन बदला लेकिन जीवन दाता तक की यात्रा 1% भी कोई कर ले, सद्युग आएगा नहीं, सद्युग अभी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। और जो शिविर के दिनों में ध्यान के नियमों का पालन करते हुए बाहर का चाट पकोड़े या खाना आदि ठांसते नहीं है, खान पान सात्विक हो और पेट हल्का हो, आधा तो खुराक से पेट भरे, चौथाई पानी से और चौथाई खाली रखे, घर में भी रहे तो ऐसा, लेकिन खा खा के ठांस ठांस के आते, अथवा 2-3 दिन ठीक ठाक रहते वहां सुनते सुनते फिर वही चाट पकौड़े ये व्यंजन, तो जो मिला है उसको बढ़ाते नहीं, धीरे धीरे बैटरी डाउन करते, फिर ध्यान योग शिविर में आते, थोड़ा फिर मिलता है 5-25 दिन 5-25 सप्ताह मजे में रहते, बोले फिर शिविर की याद आती। नहीं, ध्यान योग शिविर में जो मिलता है उसको फिर अकेले में जाकर बढ़ा दो, फिर देखो आपका तो मंगल ही मंगल, आप बोलेंगे और जिसके कान को आपकी वाणी छुएगी ना उनका भी मंगल होने लगेगा और जिन पर आपकी निगाह पड़ेगी उनका भी मंगलमय पुण्य उभरेगा। हे राम जी, ब्रह्मवेताओं को तो प्रणाम है लेकिन ब्रह्मवेताओं की दृष्टि जिन पर पड़ती है उनको भी मेरा प्रणाम है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी गुरुवाणी कहती, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ऐसा गुरु मुझे मिला तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, उसकी याद आते मेरा दिल द्रवित हो जाए तो क्या बड़ी बात। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, एक बार मैंने गुरुजी से भी ढिठाई की थी। गुरुजी बोलते पढ़, मैं पढ़ता, एक दो आदमी होते वहां खास जो 2-5 होते वही उन्हीं को आज्ञा, बिना आज्ञा के कोई वहां जाता तो गुरुजी नहीं ठहरने देते थे। तो एक बार आ गया मौका सुखमणि पढ़ने लगा, तो मैंने गुरुजी को कहा कि ये यहाँ लिखा है ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले। तो गुरुजी मेरी समझ गए मजाक को, बोले तू चुप रहे पढ़ पढ़। फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैंने बोला सही इतना बता दो ना उनको ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं, नहीं तो मैं अभी बता दूं उनको उनको बता दूं ब्रह्मज्ञानी कहाँ रह रहे। अरे बोले तू पढ़। तो कभी कभी तो ऐसी सहजता हो जाती थी, वो भाई वो दिन अलग थे। अब तो सब सामाजिक लोगों से मिलना होता है, शहनशाह से मिलते थे तो वो कुछ वो दिन ही अलग थे। अब उन्हीं की कोटि का कोई संत का पता चल जाता है तो मैं उनसे मित्रता कर लेता हूं। हरिद्वार में घाट वाले बाबा रहते थे और हमारी ऐसी जमी दोस्ती के, वो 70 साल के हम 30 साल के, उनकी दाढ़ी में हाथ घुमा दे और वो मेरे को गुरुजी बोले, मैं उनको गुरु बोलू, उनके भक्त दंग रह जाते और उनके भक्तों को, उनके भक्त आते हैं बोले स्वामी जी आपके लिए क्या लाऊं, बोले हमारे गुरुजी से पूछो। तो मैं उनको बोलता कि आपके गुरुजी नहीं खाएंगे पहले, क्योंकि तुम्हारे गुरु है, मेरे शिष्य हैं। तो था तो वो बोलते अच्छा आप स्वामी जी क्या खाओगे, मैं क्या स्वामी जी नहीं, तुम ये बोलो हमारे दादा गुरु आप क्या सेवा स्वीकार करेंगे, और ठाका मार के हम सभी हंसते थे। ऐसी सहजता। एक बार मेरा रसोईया मेरे लिए टिफिन ले आया, मैं उनके साथ बैठा रहता, समय होता तो टिफिन ले आता। तो बोले अरे क्या लाया है आसाराम जी के लिए? बोले भोजन लाया हूं। अरे बोले क्या दिन भर खिलाता है इनको, अभी तो डेढ़ पाव काजू खा गए, रबड़ी खा गए, अब फिर खाना खिलाता है क्या? तय आसाराम को दिन भर खिलाता रहता। उसने बोला स्वामी जी हमारे साईं तो खाली सब्जी रोटी खाते हैं, दो सब्जी भी नहीं और सादा खाते हैं। अभी क्या क्या लाया है? बोले सब्जी है, रोटी है और थोड़ा सा खीरे का कचुम्बर है, ककड़ी है बस। तो बोले तू डर गया रे, तेरे गुरुजी कुछ भी खाए तो क्या हो गया? ये तो शाहों का मार्ग है, इतने में सुकड़ गया, डरता क्यों है रे? चलो कुछ नहीं खाया इधर काजू भाई, ऐसे ऐसा विनोद करते ऐसे ऐसे सहज में। तो ऐसे संत कभी कभार धरती पे होते हैं और उन्हीं महापुरुषों की परंपरा से कोई शिष्य पर शिष्य मिले जुले, उन्हीं के प्रभाव से अभी दुनिया में जो थोड़ी सच्चाई, थोड़ा स्नेह, थोड़ी रौनक या थोड़ी आध्यात्मिकता का एहसास हो रहा है, ये सब उन्हीं की देन। अभी भी जो दुनिया में थोड़ी बहुत रौनक है ना, ये सीधी अनसीधी वाया वाया करके भी उन महापुरुषों की सहजता। आदिपुर में बापूजी की कुटिया थी, एक बड़ा प्रसिद्ध जिसने अपने नाम की कॉलेज भी बनाई थी, एक्सपर्टर था, वो दर्शन करने आया। अब बापूजी घूमने गए तो बैठ बैठ के थका, बापूजी को देर हो गई, तो उनका सेवक उनको बुलाने गया, ढूंढने गया, तो बापूजी आ रहे हैं, एक हाथ में करमंडल और एक हाथ सिर पर वो जो माया गरीब मजूर माया नहीं कंडे ढूंढती है, लकड़ियों के टुकड़े ढूंढती, वो ऐसा भारा बनाकर सिर पे ले आ रहे थे। वो सेवक बोलता है कि बाबा पिताजी क्या कर रहे हो? वो तोलानी सेठ जैसे तो इंतजार कर रहे हैं और तुम ये लकड़ियां चुनने में इतनी देर कर दिया, अब ऐसे चलोगे तो क्या मानेगा? बोले कुछ भी माने क्या है, रोटी बन जाएगी दो टाइम की, कोल से बच जाएंगे तेरे, इसमें क्या बुरा है। वो भारा लेकर चले आ रहे, बड़े बड़े सेठ जिसके दर्शन का इंतजार कर रहे वो भारा लेकर आश्रम में पटका। बोले ये लीला सासाई है? बोले हाँ। अच्छा तो ये रजाई, ये फलाना, ये सामान, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद लो, अच्छा जाओ आप। उनको जल्दी भगा दिया। और कोई गरीब था चौकीदार, अरे ले ये रेशम की रजाई आई है, प्यू लीलाशा तेरे द्वारा भोगी, ले जा पैर ले उठा, बांट दिया। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, पाटन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है लगभग, वहां बापू का सत्संग था, विदाई के समय लंबी शोभा यात्रा निकली और जिसमें दुल्हा लोग बैठते ना ऐसी बैंड बाजा लेके जो जीप सजाई होती है नकली घोड़ों आदि की, उसमें सिंहासन लगा था, बापूजी बैठे थे पास में, मैं भी अदब से बैठा था। और लंबी कतार चली बीच बाजार, बापूजी उसमें से उतरे तो मैं भी पीछे पीछे गया, लोग खड़े हो गए। बापूजी ने कहा तुम चलो, ले चलो ये बारात को, मैं आता हूं स्टेशन पे ही आना है ना, तुम चलो। लोग बोले साई, अरे साई क्या बोलता, आ गया बल्ब चल। वो लंबी प्रोसेस चल रही, उसमें से दुल्हा उतरा, 90 साल का दुल्हा, जयराम जी की लीलाशा दुल्हा उतरे उसमें से और फुटपाथ पे जामफल बेचने वाले के यहां जाके बैठ गए, 3 जामफल चुने, तुलवाया। अरे हाथ मत मार, हकार कर। वो बोले 2.5 आने हुए? बोले नहीं 2 आने के हुए, तो हाथ मार के सब तो रकझप करती। मैंने उसे इशारा कहा कि हाँ बोल दे, उसको अलग से चवनी पकड़ा दी। वो 3 जामफल लिए, झोले में बांधे अपने अंगोछे में और यहां लटकाए, चल शोभा यात्रा इंतजार कर। स्टेशन तो नजीक था, बोले बापूजी बैठो। बोले अब तो आ गया स्टेशन, ट्रेन में बैठे, चलो अपने 3, एक उनका सेवक, एक मैं अंगत सेवक करता था, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, बापूजी को पहचान नहीं पाया। बापूजी के लिए कैसा उसको व्यवहार करना चाहिए था उस बेचारे को पता नहीं चला। एक मुझे दिया, एक इतने में पास में जो हमें छोड़ने आया था वो डॉक्टर लाया, टाइम्स ऑफ इंडिया। साईं साईं, आज से करीब 29 साल पहले की बात है। साईं साईं, अमेरिका ने खोज किए, चांद तक पहुंचे और वहां की मिट्टी लाए, और वे कहते हैं कि richest people can stay there, धनी आदमी वहां रह सकेंगे, ऐसा एक साल के अंदर होटल बनने की संभावना है। अरे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, एक सेकंड में कुछ नहीं होगा। बोले बापूजी, है विज्ञानियों ने ये लाए थे, ये तीसरा रॉकेट, ये पांचवा फलाना जोगी, उसको समझ थी। वो बोला, अरे बोले वे हीरो झुकी वे टटनवा नहीं, सिंधी हुंदा वे समझी व्या हुंदा, बैठ जा चुप। आज तक अमेरिका ने चंद्रलोक पर होटल बनाया हो और धनी आदमी रहते हो, ये मैंने नहीं सुना है। आपने सुना है और आप बता सको तो मैं आपका चेला बन जाऊं। कैसी ऊंचाई और कैसी सहजता, कैसी ऊंचाई और कैसी सरलता, कैसी ऊंचाई और कैसी निष्प्रियता। एक दिन में भाव में आकर चरण पकड़ा, सेवा नहीं लेते थे फिर भी मेरा संकल्प था सेवा। तो मैंने कहा, गुरुजी कोई आज्ञा कर दो, कोई सेवा दो। बोले, सेवा करेगा? हाँ। मानेगा आज्ञा? क्या मानूंगा? सोचा कि गुरुजी कहेंगे तुम दो भाई हो, तुम्हारे हिस्से की संपत्ति दे दो, अच्छे काम में लगवा दो, तो लगा देंगे, थोड़े से अपने रख के बाकी का। लेकिन गुरुजी को क्या कहना है ये अनुमान कर रहे थे। गुरुजी ने बोला, मानेगा क्या? बोले हाँ, करेगा सेवा। बोले, करेगा ना? तुम जीवन मुक्त बन जा, ब्रह्मज्ञानी, और दूसरे को बढ़ा, बस यही सेवा है।
अरे मैं क्या हद कर दी, तू बन जा जीवन मुक्त, हो जा मस्त, बन जा और दूसरों को बढ़ा,
दूसरों को बढ़ा, ये दो उनके शब्द हैं। और दूसरे अपने आप बन रहे हैं, अपने आप भागे भागे लोग आ रहे हैं मस्त बनने के लिए, अपने आप आ रहे हैं। उनका संकल्प कैसा? ये गुरु पूर्णिमा व्यास जी के आदर और व्यास जी की महानता, ब्रह्मज्ञानियों की महानता की स्मृति दिलाने वाली पूर्णिमा है। ब्रह्मज्ञानियों की महानता की स्मृति आपकी महानता को जगाने के लिए। तुम चार पैसे कमाकर, चार रोटी खाकर, चार बच्चे पालकर संसार में तप मरने के लिए नहीं आए हो। भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ये तो मूढ़ मन की पहचान है। भोजन छाजन की चिंता में खप मरे, तुम तो चिंतन करो, ये चीजें तो तुम्हारे पीछे पाले हुए कुत्ते की नहीं चली आए। तुम्हारे अंदर ऐसा परमेश्वरीय तत्व है, ऐसा परमेश्वरीय माधुर्य है, ऐसा परमेश्वरीय ज्ञान है, और उसी ज्ञान को पाने वाली मति है, श्रद्धा है। फिर तुम जगत का चिंतन अधिक करके अपने को घाटे में मत डालो। जगत की बातें अधिक सोचकर कहकर अपनी शक्तियों का आरास मत करो, आप विश्रांति लो। उस सोहम की उपासना की पद्धति प्रयोग कराए जाएंगे, आप विश्रांति लो, सामर्थ्य उभरेगा। विश्रांति लो, निश्चिंतता लो। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होई सो होए। अपने तरफ से पूरा प्रयत्न करो, लेकिन चिंता के समय तुलसीदास के वचन सामने धर दो मन के, निश्चिंत होकर भगवत प्रसाद भी पाओ। आज जो बताया था श्वासोश्वास की, इसमें पहले शरीर की विश्रांति हो, शरीर का तनाव मिटना चाहिए। आप ध्यान भजन में हो, थके लगो तो लेट जाओ, शरीर को खींचो, खूब खींचो, फिर थोड़ा ढीला छोड़ो और मेरे स्वास्थ्य के कारण बढ़ रहे हैं इसी भावना करो। 5-7 मिनट में आपका शारीरिक तनाव कम हो जाए, फिर आप अजापा की यात्रा करो। श्वास गया, देखा, आया, देखा, उसमें मंत्र मिला दिया। फिर 2-5 मिनट ऐसा करने के बाद फिर श्वास गया, उस उतने में आपने 5 गिने, और श्वास आया उतने में आपने 5 गिने, वो मन एकाग्र होने लगेगा, एकाग्र मन सफलता की कुंजियां लाएगा, एकाग्र मन प्रसन्नता की पवित्र धारा लाएगा, एकाग्र मन आकर्षणीय शक्ति उभारेगा, मन का कुछ कुछ क्षणों के लिए एकाग्रता का प्रसाद मिलेगा। आप फिर वो बढ़ाते जाओ, पहले आप 5 मिनट से साधना शुरू करो, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करते करते 45 मिनट की साधना करो, सुबह दोपहर शाम, फिर सुबह की साधना बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे की करो, 6 महीने के अंदर तो आपका दीदार करने वाले को भी लाभ होने लगे, आप ऐसे खजाने के मालिक बन जाओगे। चाहे किसी जाति को, किसी मजहब के हो, किसी मत पंथ के हो, चाहे मेरे को मानते हो या मेरी निंदा करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भला हो जाएगा, पक्की बात। आप चाहे मेरे हरीफ हो, फिर भी हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये प्रयोग करो, जहां आपको रुकावट है हम ईमानदारी से आपको बता देंगे कि भाई अब यहां चलो। चाहे आप मेरे हरीफ हो, चाहे मेरे को देखकर आपको डर लगता है कि हमारा धर्मांतर का काम खतरे में पड़ेगा, नहीं, हम आपके लिए कोई खतरा नहीं करते, हम तो हिंदुस्तानियों को सावधान करते हैं और आपको भी सावधान करते, आप भी खतरे से पार आ जाओ। दूसरों को दगा करके, धर्मांतर करा के दूसरे के देश को हड़पना, ये आपके लिए खतरा है। सब अपनी अपनी जगह पर उन्नत हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश रहे, चाहे आप किसी भी देश में रहो, किसी भी जाति में, सबका मंगल हम चाहते हैं। मेरे गुरुदेव की उदारता और करुणा मुझे याद आती। गुरुदेव सुबह घूमकर नैनीताल के जंगल में जो कुटिया थी घूमकर आए, जहां बैठते थे रोज, और फिर थोड़ा सत्संग करते थे सार सार बातों का, तो वहां बिच्छू नाम का पौधा था, उसको अगर जाने अनजाने छू लेने तो बिच्छू काटे उतनी पीड़ा होती है, उसके लोग सब्जी भी बनाते हैं, वायुनाशक होता है, पालक की जैसा बनाई जाती है। तो बिच्छू था, तो बिच्छू को जड़ से हमने उखाड़ के फेंका, तो जहां फेंका तो गुरुजी आते देख गए, तो गुरुजी ने मेरे को डांटा कि क्या किया। मैं कैसा ही, वो बिच्छू का पौधा था और आप यहीं बैठते तो कभी आपको लग ना जाए, इसलिए मैंने उसे उखाड़ के फेंका। अरे मुझे पता है, मैं संभल के बैठता हूं, उस बेचारे को क्यों तकलीफ दी, वो भी तो जीवन जी रहा था, गलती किया, उठा दूसरी जगह लगा दे। ओहो, काटने वाला बिच्छू का पौधा, उसके लिए भी जिसके हृदय में प्यार है, उसका मैं शिष्य होने का सौभाग्य, तो मैं दूसरों के लिए नफरत कैसे रख सकता हूं। मुझे उनका ये व्यवहार इतना अच्छा लगा कि मुझे याद रह गया, कई बार मैंने कथाओं में कहा कि नहीं प्रेम जी, कई बार कहा। तो मैं किसी मजहब के, किसी रिलीजियस के, किसी व्यक्ति के लिए अपने दिल में नफरत क्यों रखूंगा, अपना दिल खराब क्यों करूंगा। लेकिन जिस देश का हम अन्न खाते हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, जिस संस्कृति ने हमको ईश्वर से मिलाया है, उस संस्कृति की महिमा गाना भी तो हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है। उस संस्कृति के प्रति कोई हनुमान जी को, कोई राम जी को, कृष्ण जी को, नानक जी को नीचा दिखाए, ग्रंथ को नीचा दिखाए, तो उसको सुनाना भी तो मेरा कर्तव्य है। जय राम जी की। अजी नानक जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, अजी ऐसा क्यों कर दिया, तो नानक जी पर दोषारोपण करके आप हिंदुओं को, सिखों को लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हो। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि नानक जी के हृदय में तो राम जी के लिए प्यार है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक एह बिपत मेटे कए कर गुनाथ। ये भी तो सुन लो, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, ऐसा नानक जी ने कहा। नानक की गद्दी पे जो बैठे उन्होंने कहा, तो नानक जी ने कहा मान लो। तो हमारे देश के संतों के प्रति कोई कुछ कह दे और मैं चुप रह जाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। हमारी संस्कृति के लिए कोई अनाप शनाप बकले और मैं चुप रह जाऊं, मेरे बस की बात नहीं। और हमारे साधकों को कहीं हानि होती और मैं देखते रह जाऊं, मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। सोहम की साधना बहुत सूक्ष्म है। मंत्र दीक्षा लिया, ध्यान योग शिविर में आओगे, उचित शक्ति जगेगी, फिर साधना का स्वाद मन को मिल जाएगा। आप खाली नियमित बैठा करो, समय निकाल के साधना अपने आप होगी। जो किया जाता है उसमें भूल भी हो सकती है और थकान भी, लेकिन जो अपने आप ईश्वर करवाते हैं उसमें न भूल है न थकान है। आप ही तो तीनों थकान मिटेगी, मानसिक थकान मिटेगी, तनाव मिटेगा, शारीरिक तनाव मिटेगा, भावनात्मक तनाव मिटेगा, और बहुत बहुत अब उसका क्या करूं, कोई जागतिक दृष्टांत नहीं मिलता, इतना खजाना है आपके अंदर। जब मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा, पूरा जगत सवा कसीरा, ऐसा है परमात्मा हीरा और वो सबके पास है। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। कर्मी अपने बाहर के कर्मों में ही संसार में खप जाता है, अंदर के खजाने से कंगाल रह जाता है। तो इस गुरु पूनम का संदेश ये कि आप अंदर के खजाने को पाने के लिए और इस गुरु की निधि को साधारण न समझे, इसका मूल्य समझे, इस चिंगारी को ज्वाला के रूप में प्रकट करने के लिए साधन भजन में लगे। मौसम बदला, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा को घूमते फिरते साधु भी एक जगह रहकर अनुष्ठान करते हैं और व्यास जी के प्रसाद को पचाते और समाज को बांटते। इस व्यास पूर्णिमा के महोत्सव के निमित्त साधकों का और संतों का मिलन होता है। नई दिशा, नए संकेत, नया उत्साह, पुराने साधकों को नए साधकों से मिलने का, नए को पुराने से मिलने का अवसर मिल जाता है और पुरानी अनुभूतियां सुनकर नए साधक भी आगे बढ़ते हैं और नए साधकों को गुरुओं का कुछ नया संकेत मिलकर और यात्रा होती है। जैसे बनिया लोग दिवाली में नफा नुकसान और जांगड़ पड़ी हुई चीज, न चलने वाली चीज, कम चलने वाली चीज और अधिक चलने वाली चीज का हिसाब किताब लगाते, ऐसे ही साधना के विषय में, विचारों के विषय में, संयम के विषय में परस्पर विचार चर्चाएं होती थी। अब हाय हाय का युग हो गया, जो काम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला उसके लिए समय नहीं है और जो सब छोड़ के जाना है इसीलिए हम खप रहे हैं। ऐसा कलयुग और फास्ट युग आ गया, हर आदमी चंचलता में खपा जा रहा है। फिर भी और देशों की अपेक्षा भारत में अभी भी अच्छा है कि एक संत को सुनने के लिए इतनी तादाद में दिल्ली के लोग, महानगर के लोग और इतनी तादाद में सोमवार के दिन भी बैठे हैं और मंगल को भी बैठ सकते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, महापुरुषों का प्रसाद है और साधकों के पुण्य है। ऐरे गहरे का काम नहीं, ब्रह्मज्ञान के सत्संग की जगह पे पहुंचना। एक एक कदम चल के आते यज्ञ का फल होता है, श्रद्धा से बैठते हैं भक्ति योग फलित होने लगता है, सुनते हैं ज्ञान योग फलित होने लगता है, कीर्तन करते जप यज्ञ फलित होने लगता है। हजार अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य सोल में हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता है। इतना पुण्य आप सहज में कमा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ॐ सहनाम भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहि, तेजस्विनावस्तु, मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति।